हरे कृष्ण। अब कल यहाँ कौन कौन थे, हाथ उठाइए। और कल कौन नहीं थे, हाथ उठाइए। अच्छा, ओके। सो शुड वी गो अहेड विद द सेमिनार ऑन बृहद भागवतामृतम। कल जो बृहद भागवतामृतम के ऊपर हम सेमिनार हो रहा था 3 दिन, वही क्या आज विचार करेंगे या आज और कुछ? क्योंकि काफी आदमी आए हैं, काफी लोग आए हैं जो नहीं थे, और ये जो सेमिनार 3 दिन से हो रहा है। हाँ, क्या विचार है आप लोगों का? हाँ, सेमिनार या ऐसे? अच्छा, सेमिनार कौन चाहते हैं? और ऐसे सीधा भगवान के वाणी या क्या हम कर रहे हैं वो कौन सुनना चाहते हैं? अच्छा, और कौन कुछ नहीं सुनना चाहते हैं? ठीक है, तो सेमिनार के बारे में ही हम विचार करेंगे। जो पहले आए हैं और जो नहीं थे सेमिनार में, उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ बताएंगे और किस विषय में ये चर्चा हो रहा है। सेमिनार का विषय है बृहद भागवतामृतम नाम के एक ग्रंथ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान पार्षद श्रील सनातन गोस्वामी ने रचना किए हैं। ये बृहद भागवतामृतम श्रीमद् भागवतम का विस्तारित विश्लेषण है। एक कहानी के माध्यम उन्होंने श्रीमद् भागवतम का तत्व वर्णन किए हैं। श्रीमद् भागवतम के बारे में आप कौन कौन नहीं जानते हैं, हाथ उठाइए। श्रीमद् भागवतम के बारे में, और जो जानते हैं हाथ उठाइए श्रीमद् भागवतम के बारे में। अच्छा, श्रीमद् भागवतम जिसे सारे वेद का सार निचोड़ के रूप में व्यासदेव ने प्रदान किए हैं। व्यासदेव इस कली युग के मनुष्यों का स्थिति या हाल देखकर उन्होंने विचार किया कि इस कली युग के मनुष्य के लिए वेद का जो वेद तो विशाल है, और जब तक पूर्ण वेद का पूर्ण ज्ञान हमें नहीं होता है, तब तक वेद का मर्म क्या है वो हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए व्यासदेव ने विचार किया कि वेद का विश्लेषण करने का जरूरत है, वेद का सरल रूप में वेद का विस्तार करना है। तब श्रील व्यासदेव ने वेद को 4 भाग में विभाग किए। उसके बाद वेद का विभिन्न भिन्न अंग का विस्तार किया, जैसे उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, संहिता। और उसके पश्चात उन्होंने भारत के इतिहास महाभारत रचना किया साधारण मनुष्यों के लिए। और तत्पश्चात श्रील व्यासदेव ने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का रचना किया। ब्रह्म सूत्र जो है वो है वेद का गूढ़ मर्मार्थ, जो सूत्र के रूप में विश्लेषण किया गया है। सूत्र के रूप में मतलब इन सिंबॉलिक फॉर्म, व्हाट इज द हिंदी एक्सप्रेशन फॉर सिंबॉलिक फॉर्म? सिंबल, संकेत। हाँ, संकेत, सांकेतिक भाषा में। वेदांत सूत्र असल में सारे वेद का अंत में, मतलब सांकेतिक सूत्र के रूप में, विश्लेषण किया गया है। अच्छा, ये सूत्र के विश्लेषण करते हुए एक कहानी भी बताया गया है। एक राजा ने अपना मंत्री को कैद कर दिया और एक स्तंभ के ऊपर, बहुत ऊंचा एक स्तंभ के ऊपर उनको रख दिया, कैद किया। कोई मंत्री ने कुछ अपराध किया होगा, तो मंत्री ने वहां से निकलने का संकल्प किया, पर वो तो बहुत ऊंचा स्थान था। तो अपना पत्नी को लिखा कि एक मक्षी, मधुमक्षी और थोड़ा और एक लंबा सा रेशम का सूता और मोटा सा रस्सी, उसे व्हाट इज अ रेशम का जो बहुत पतला सूता होता है, उससे थोड़ा सा मोटा रुई का सूता और बाद में एक मोटा सा रस्सी लाना। तो जब उनका पत्नी ये लाया नीचे, तो मंत्री ने ऊपर थोड़ा सा मधु रखा था और बोला कि वो जो मधुमक्खी है उसका उसका पैर पर वो जो रेशम का सूता है उसको बांध के एक कोने में रेशम का सूता बांधना और दूसरे कोने में वो रुई का जो सूतली है उसको बांधना और रुई का सूतली को रस्सी से बांधना। और मधुमक्खी क्या किया, वो मधु रखा था तो मधु लेने के लिए वहां आया, तो मंत्री ने मधुमक्खी को पकड़ा और जो रेशम का जो सूता था उसको पकड़ा, तो रेशम का सूता से वो मोटा जो सूता उसको उठाया और उसके पश्चात मोटा रस्सी को उठाया और रस्सी से नीचे उतर गया। तो सूत्र का विश्लेषण ऐसे हुआ है, बहुत सूक्ष्म रूप में सूत्र का विस्तार होता है और वो सूत्र से और भी गहरा, मतलब और भी स्थूल विचार और सरल विचार का हमें पता चलता है। तो ये है सूत्र, वेदांत सूत्र। बहुत सूक्ष्म रूप में इसका वर्णन हुआ है, परंतु उसको समझना कठिन है। वेदांत सूत्र का बहुत विश्लेषण हुआ है। जैसे चार संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, चार संप्रदाय का चार, वेदांत सूत्र का चार भिन्न भिन्न प्रकार का भाष्य है। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो ये चार वैष्णव संप्रदाय का ऐसे चार विचार हैं। और शंकराचार्य ने एक नया विचार स्थापना किया, वो है केवलाद्वैतवाद। तो ऐसे हम देखते हैं ये वेदांत सूत्र का वैष्णव संप्रदाय में ही कितने भाष्य हुआ है, मतलब भिन्न भिन्न विश्लेषण हुआ है। परंतु व्यासदेव स्वयं नारद मुनि के निर्देश अनुसार व्यासदेव ने वेदांत सूत्र का भाष्य रचना किए हैं। व्यासदेव का दिया हुआ जो वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो है श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र का स्वाभाविक विश्लेषण स्वयं व्यासदेव ने ही किया है श्रीमद् भागवतम के रूप में। वेद अंत, वेद का अंत क्या है, वेद का अंतिम शिक्षा क्या है, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के बारे में ऐसे विश्लेषण हुआ है, श्रीमद् भागवतम का वर्णन ऐसे हुआ है, निगम कल्प तरोर गलितं फलम सुक शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूवि भावुका। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, वेद एक कल्प वृक्ष जैसा है, निगम, निगम का अर्थ है वेद, और कल्प वृक्ष क्या है? आप जानते हैं कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष ऐसी एक वृक्ष है जिसके पास हम जो कुछ चाहता है वही मिल जाता है। इस भौतिक जगत में कल्प वृक्ष नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष है। देवलोक में भी, स्वर्गलोक में भी एक कल्प वृक्ष है, वो क्या है? पारिजात। पारिजात कल्प वृक्ष है। वैसे आध्यात्मिक जगत में, चिन्मय जगत में जो वृक्ष है वो है कल्प वृक्ष। वहां के गाभी जो है, गाय जो है, वो है सुरभि। ये सुरभि गाय केवल दूध ही नहीं देती है, जो कुछ चाहते हैं वही मिल जाता है। तो ये जो वेद एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष जैसा है, कल्प वृक्ष के पास हम जो कुछ मांगते हैं वही मिल जाता है। तो अब सोचिए, जिस वृक्ष के पास जो कुछ हम चाहते हैं वही मिल जाता है, तो उस वृक्ष का जो फल है वो क्या, वो कितना सुमधुर या दुर्लभ होगा, है ना? और ये फल निगम कल्पतरुर, ये फल जो है कैसी फल है? गलितम फलम। गलितम का मतलब एकदम पका हुआ फल। और तत्पश्चात शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से मिला हुआ है। और वो क्या है? वेद रूप कल्प वृक्ष का पक्का फल जो सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से युक्त हुआ है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम ही सारे वेदों का सार है। सार का मतलब, जैसे दूध से, दूध का सार क्या है? मक्खन। तो वैसे ही वेद का सार है श्रीमद् भागवतम। दूध का सार केवल मक्खन ही नहीं, देखिए एक समुन्दर है, एक सागर है जो दूध का सागर है। यहां जो सागर है हमारे यहां पृथ्वी पर, वो है नमक का सागर, लवण समुद्र। ऐसे बहुत सारे समुद्र हैं, परंतु एक ऐसा समुद्र है जो दूध का समुद्र है, उसे क्या कहा जाता है? क्षीर सागर। क्षीर सागर, क्षीर का मतलब है दूध। तो दूध सागर को मंथन करके क्या निकला था, आपको, आप जानते हैं, देव और दानवों ने ये क्षीर सागर को मंथन किया, मंदर पर्वत को मंथन दंड बनाकर, और वासुकी को उस मंथन रज्जु बनाकर, रस्सी बनाकर, देव और देवता और दानवों ने जब इस सागर को मंथन किया, तो मंथन करने से क्या निकला था? अमृत। तो वैसे ही सारे वेदों को अगर हम मंथन किया, अगर नहीं, सारे वेदों के मंथन करने से जो अमृत निकला है वो है श्रीमद् भागवतम। दो ग्रंथ हैं हमारे, दो ग्रंथ ही वेदों का, सारे वेदों का सार है। एक है भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। सारे उपनिषदों में श्रेष्ठ है गीतोपनिषद या भगवद गीता, और सारे पुराणों में से श्रेष्ठ है भागवत पुराण। भगवद गीता के बारे में भी इस तरह वर्णन किया गया है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद, सर्व उपनिषद, समस्त उपनिषद हैं एक गाय जैसी। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, उस गाय को दोहन करने वाले हैं गोपाल नंदन श्री कृष्ण, और उस गाय का वत्स या बछड़ा है अर्जुन, और उस गाय को दोहन करने से जो अमृत निकला है वो दुग्धामृत क्या है, वो दुग्धामृत है भगवत गीता, और उस दूध कौन पीते हैं, उस अमृत कौन पीते हैं, सुधीर भोक्ता, जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है उन्होंने ही इस दुग्धामृत को पान करते हैं। गीता आप पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, आप सुधी व्यक्ति हैं, तो जो सुधी है बुद्धिमान है उसका सुधी सुंदर धी का परिचय कैसे होता है, जो भगवद गीता का अमृत पान करते हैं। और देखेंगे आप, या तो आप जो पढ़ रहे हैं आप देख चुके हैं कि भगवद गीता पढ़ने से क्या होता है, हम मृत्यु को जय कर लेते हैं ना, तो मृत्यु मतलब मृत्यु को जय हो जाने से क्या होता है, अमृत। तो ये गीतामृत जो है ये सही अमृत है, ये कोई कहने का नहीं है, ये कोई साधारण कहावत नहीं है, सही असल में ये है, ये अमृत है। भगवद गीता श्रवण करने से, भगवद गीता का वाणी समझ लेने से हम अमर बन जाते हैं, मृत्यु नहीं होता है। और ये विचार भी भगवद गीता में बहुत सरल भाव में हुआ है। देखिए ये जो अमृतत्व, सो अमृतत्वाय कल्पते, उसको अमृतत्व लाभ हो जाता है, कैसे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, और अपना असल परिचय है आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम असल में हम आत्मा हैं, और आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, आत्मा अजय है, आत्मा नित्य है, अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु होता है शरीर का। और मृत्यु का मतलब क्या है, शरीर का मृत्यु होता है, इसका मतलब क्या है, आत्मा जब शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो शरीर का मृत्यु होता है, शरीर का मृत्यु होता है। इसका मतलब यह है कि हम जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा शरीर का मृत्यु होगा, हमारा मृत्यु कभी नहीं होगा, हम अमर हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा अमर है। तो आप सोचिए इस ज्ञान कहां मिलता है, इस ज्ञान के स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, वहां ये शिक्षा मिल रहा है, नहीं, परंतु भगवद गीता में ये शिक्षा हमें बहुत सरल रूप से मिलता है, और उसके भी एडवांस्ड कोर्स है श्रीमद् भागवतम। अमर बनने के पश्चात क्या होता है, हम जब अमर बन जाते हैं, हम मृत्यु को जय कर लेते हैं, हमारा आत्मिक स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात भगवान के साथ हमारा संपर्क बन जाता है, और वो संपर्क हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य है, भगवान के साथ जो ये संपर्क किसकी माध्यम स्थापना होता है, ये हर संपर्क का ही भित्ति है प्रेम। देखिए पिता पुत्र के बीच जो संपर्क है उसका उद्देश्य, उसका भित्ति क्या है? प्रेम है ना। पिता पुत्र को प्रेम करते हैं, पुत्र पिता को श्रद्धा करते हैं। ये जो प्रेम जो है पुत्र के प्रति जो पिता का जो प्रेम है इसे स्नेह कहा जाता है, और पिता के प्रति पुत्र का जो प्रेम है उसे श्रद्धा कहा जाता है। वैसे ही अपने पुत्र के प्रति माता की जो प्यार है, दोस्तों के बीच जो संपर्क है, जो मैत्री है दोस्तों के बीच, उसका भित्ति क्या है? वो भी प्रेम है। प्रेम के माध्यम ही संपर्क बनता है। अगर भगवान के साथ हम संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो कैसे हम वो संपर्क जोड़ेंगे? प्रेम के द्वारा, है ना। प्रेम असल में प्रेम एक शक्ति है जो हर जीव के साथ है, हर प्राणी के, हर आत्मा के साथ है। हर प्राणी के हृदय में प्रेम है, प्यार है, और ये प्यार जो है, ये प्रेम जो है, ये एक शक्ति है। ये शक्ति का कार्य कैसा होता है? एक दूसरे को अपना नजदीक लाता है। प्रेम हमें जोड़ते हैं और द्वेष हमें दूर हटा देते हैं। तो ये प्रेम जो एक शक्ति है, इस ये प्रेम जब भगवान के प्रति अर्पण होता है, अर्पित होता है, तब भगवान के साथ हमारा संपर्क बनता है। तो ये संपर्क ही, भगवान के साथ ये संपर्क जोड़ना ही मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य है। केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी का, हर व्यक्ति का, हर जीव का, जीवन का अंतिम उद्देश्य है ये प्रेम, भगवान के प्रति ये प्रेम। परंतु मनुष्येतर, मनुष्य के इतर जो प्राणी हैं, जैसे जानवर, चिड़िया, पंछी, उसका चेतना का विकास नहीं होने के कारण उनके लिए ये प्रेम, भगवान के साथ ये प्रेम के संपर्क स्थापन करना संभव नहीं होता है। परंतु मनुष्य जीवन में ये सुयोग मिलता है। इसलिए बताया गया है कि लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। बहुत बहुत संभावना के बाद जब हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है, तो इस शरीर को सद उपयोग करने के लिए, इस शरीर प्राप्ति से होने, इस प्राप्त होने से हमें जो एक सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य का सद उपयोग करने के लिए हमें भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये ही हमारा शास्त्र में बार बार निर्देश दिया गया है। तो मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य जो है, इस भगवान के साथ प्यार की संपर्क स्थापन करना, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। भगवद गीता में भगवान उनका शरणागत होने का निर्देश दिया है, उनको, उनके पास अपने आप को समर्पण करने का निर्देश दिया है। भगवद गीता का अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान, समस्त धर्मों को परित्यग करके केवल मेरा शरण लो। तो देखिए ये एक आश्चर्य निर्देश है भगवान का। भगवान गीता में कह रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म स्थापन को करने के लिए, धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं आता हूं। जब अधर्म का विस्तार होता है और धर्म का नाश होता है, क्षय होता है, तब भगवान अवतरण करते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए। भगवान आते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए, परंतु यहां भगवान क्या कह रहे हैं, सारे धर्म को त्याग दो। ये एक कंट्रडिक्शन है। कंट्रडिक्शन का हिंदी शब्द क्या है? विरोधाभास। विरोधाभास। तो ये विरोध वाणी भगवान क्यों कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि भगवान यहां हमें समझा रहे हैं कि उनको शरण लेना ही असल धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, भगवान का शरण लेना ही धर्म है, और इसके अलावा और जो कुछ होता है धर्म के नाम पर उसे त्यागना चाहिए। भगवान को शरण लेते भी है, लेते बिना और जो कुछ चल रहा है धर्म के नाम में उसको त्यागना चाहिए। जैसे भगवान हमको खाने का रोटी दीजिए, पीने का पानी दीजिए, ये जो सारे भगवान को शरण लेने से पीना खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए कोई चिंता कोई सोचने का जरूरत नहीं है। उनका शरण लेने से सब कुछ मिल जाता है, तो उसके लिए और कुछ प्राप्ति के चाहना का क्या जरूरत है, ये भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भगवत गीता में भगवान उनका शरण लेने के ही निर्देश दिए हैं, परंतु उनके साथ प्रेम के संपर्क स्थापन का निर्देश नहीं दिए हैं। वो निर्देश श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो वैसे इस विचार से हम देखते हैं, जहां भगवत गीता का समाप्ति होता है वहां से श्रीमद् भागवतम का शुरू होता है। जैसे भगवत गीता का अंतिम निर्देश है, भगवान का अंतिम निर्देश भगवत गीता में क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और श्रीमद् भागवतम में भगवान का पहला निर्देश क्या है? श्रीमद् भागवतम का पहला निर्देश क्या है? आप में से जो श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं आपको जरूर याद है, वो निर्देश है धर्म प्रज्ञित कैतव अत्र परमो निर्मत सदानाम सताम। धर्म प्रज्ञित कैतव अत्र, कैतव का मतलब छल कपट, जो धर्म के नाम में चल रहा है परंतु असल में धर्म नहीं है। ऐसे मालूम होता है कि धर्म, असल में धर्म नहीं है। जैसे मृगतृषा देखने में कैसा मालूम होता है? पानी, परंतु असल में उसका पानी है नहीं। देखने में ऐसा मालूम होता है, देखने में मालूम होता है कि ये पानी है, परंतु असल में वो है गरम रेत, बहुत गरम, आग जैसा गरम रेत। तो पानी का विपरीत जो है वो है मृगतृषा। तो वैसे ही जो जिस आचरण को देखने से मालूम होता है कि धर्म है परंतु असल में वो धर्म नहीं है, उसे कपट धर्म या कैतव धर्म बताया गया है। तो धर्म प्रज्ञित कैतव अत्र, ये जितने सारे कैतव धर्म है कपट धर्म है उसको पूर्ण रूप से त्याग देकर जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, परम निर्मत सरानाम सताम, तब हम वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापुत्रयमुन्मूलनम्, तब हम वास्तव वस्तु जो परम सत्य परमेश्वर भगवान को हम जान सकते हैं, और भगवान को जानने के पश्चात भगवान के साथ प्यार का संपर्क का स्थापना होता है। प्रेम तभी संभव होता है जब हम उनको जानते हैं। जिनको हम नहीं जानते हैं उनको क्या हम प्यार कर सकते हैं? अगर हम बोलेंगे भगवान को प्यार करो, परंतु भगवान कौन है इस विषय ये अगर हमको पता नहीं है, तो हम क्या भगवान के साथ हमारा प्यार के संपर्क स्थापन कर सकेंगे? कभी नहीं। तो इसलिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान कौन है। और इसके पहले तो और भी एक प्रश्न आता है, भगवान है क्या नहीं? बहुत सारे आदमी तो सोचते हैं भगवान नहीं है। तो जो सोचते हैं कि भगवान नहीं है, तो उसके लिए भगवान को जानने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। परंतु जो भगवान को मानते हैं, हाँ भगवान है, तब विचार होता है चलो थोड़ा ढूंढ के देखते हैं वो कौन है। ढूंढना शुरू होता है जब विश्वास होता है कि वह है। और अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढना चाहिए? पहले पता लगाना पड़ेगा ना वो कहाँ है। जो उनको जानते हैं उनको पास जाकर उनके बारे में पूछना चाहिए। इसीलिए अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो भगवान के भक्त के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त ही भगवान को जानते हैं। जो भगवान को विदेशी है वो कैसे भगवान को जानेंगे? वो तो बोलेगा भगवान नहीं है। अगर कोई भगवान है तो मैं भगवान हूं, है ना, ऐसा उनका विचार है। मैं भगवान हूं। और कोई बोलते हैं मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, सब भगवान है, सब भगवान है, परंतु भगवान भगवान नहीं है। उनका विचार ऐसी है। जो असल भगवान जो है उनको नहीं मानते हैं, उसको त्याग देते हैं, उसको निर्वासन दे देते हैं, उनको भगा देते हैं, अस्वीकार कर लेते हैं उनको, और बोलते हैं हम भगवान है, तुम भगवान हो, सब भगवान है। तो ये जो विचार है, ये विचार कपट विचार है। अज्ञान, केवल अज्ञान ही नहीं, ये विद्वेष का विचार है। इसलिए अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो कैसे हम भगवान को जान सकते हैं? भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवान के भक्तों के कृपा से ही हम केवल भगवान को जान सकते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, भक्तोसि मे सखा चेति, अर्जुन मेरा रहस्य मैं तुम्हारे पास बताऊंगा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। भक्ता माम अभिजानाति, भक्त ही केवल भक्ति के द्वारा हमें जान सकता है। ऐसे भगवान बार बार गीता में वर्णन किए हैं। तो भगवान को अगर हम जानना चाहे तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को जानना पड़ेगा। और ये भक्ति जो है, ये भक्ति सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभ है। इसे प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होता है तब तक इसे प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो बृहद भागवतम मृतम में ये भक्ति का जो सिद्धांत निर्णय हुआ है, बृहद भागवतमृतम श्रीमद् भागवतम का ही विस्तृत वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में भगवत भक्ति का, भगवान का भक्त और भक्ति का विश्लेषण हुआ है। भगवान कौन है? एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत का शुरू में ही ये वर्णन हुआ है। बहुत सारे अवतारों का वर्णन करने के पश्चात बताया गया, ऐसे असंख्य अवतार ही असंख्यो, भगवान के असंख्य अवतार हैं, संख्यातीत, हम गिन नहीं सकते हैं। हम आकाश के तारा को गिन सकते हैं, समुद्रों का लहर के गिन सकते हैं, परंतु भगवान का अवतार तक गिन नहीं सकते हैं। असंख्यो और एते चांश कला पुंश, ये सब भगवान का अंश और अंश के अंश या अंश के अंश के अंश जो कला है, एते चांश कला पुंश, ये असंख्य अवतार भगवान का अंश और कला है। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। भगवान और अवतार में अंतर का विश्लेषण करते हुए बताया गया कि जैसे दीपार चिरेव हिदशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म जस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया कला भी गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। एक दीप से जैसे दूसरी दीप जलाया जाता है और जलने के पश्चात और दीप का भी ज्योति एक ही तरह होता है, एक दीप जलाता है और एक दीप को, जलने के पश्चात दूसरा दीप को भी जो किरण है ज्योति है पहला दीप का ही समान होता है, परंतु ये जो पहला दीप जो है उससे दूसरा सब दीप जलाया जाता है। तो वैसे ही भगवान और भगवान का अवतार में विशेषता है, समान शक्ति है, अंतर कुछ नहीं है। जैसे भगवान और भगवान का अवतार में कोई अंतर नहीं है, जैसे भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तार करके हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, आप सबके हृदय में भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो परम जो गोलोक बिहारी श्री कृष्ण भगवान और आपका हृदय का परमात्मा, कोई अंतर है? नहीं, कृष्ण ही परमात्मा के रूप में विराजमान है। यद्यपि सारे जीवों के हृदय में विराजमान है फिर भी वे अभिन्न है। भगवान और भगवान के अवतारों में कोई अंतर नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमांजो। राम नृसिंह वराह कूर्म, बहुत सारे रूप में रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, भगवान अपने आप को विस्तार किए हैं, वे भगवान का कला है, कला नियमेन तिष्ठन्। नाना अवतारम अकरद भुवनेषु, इस भुवन में, इस भौतिक जगत में बहुत सारे अवतार के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए हैं और लीला विलास किए हैं, परंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान, परंतु श्री कृष्ण ही है परमेश्वर भगवान। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण है अवतारी, सारे अवतारों का मूल। आप सोच सकते हैं, ओ महाराज कृष्ण भक्त हैं इसलिए कृष्ण का ही श्रेष्ठत्व निरूपण कर रहे हैं। देखिए ये तो कोई मेरा कहना नहीं है, ये शास्त्र का विचार है। शास्त्र का विचार अगर कोई दूसरा होता तो मैं उसी विचार को ही मान लेता था। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण भक्त हूं इसलिए मैं कृष्ण का महिमा कीर्तन कर रहा हूं, नहीं। परंतु मैं ये बोलूंगा कि चूंकि हमें मेरे गुरुदेव के कृपा से, हमारे परंपरा की धारा से ये हमें निर्णय हुआ है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, उसीलिए हम कृष्ण का भक्ति प्राप्ति का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं बोला कि कोई अवतार और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही हम और सबको ही पूजन करते हैं। साकी वो तो अभिन्न है। ये अभिन्न जो है इसका भी विचार आप देखिए कैसा हुआ है, इसका निर्देश और इसका वर्णन और दृष्टांत ऐसे दिया गया है। जो हाई कोर्ट का जज है, कोर्ट में वो क्या है, कोर्ट में सब उसको जज के रूप में देखते हैं और जो उसके माय लॉर्ड कहकर संबोधन करते हैं। जज जब क्लब में जाते हैं शाम को, वहां उनके दोस्त लोग क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस सो एंड सो, है ना। वहां उनको कोई माय लॉर्ड नहीं कहते हैं। और जब वो घर में जाते हैं तब वहां कोई उसको जस्टिस कहकर संबोधन नहीं करते हैं। हाँ, कोई बोलते हैं बेटा, कोई बोलते हैं पिता, कोई बोलते हैं भाई। हाँ, वैसे एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न जगह में उनका परिचय या संबोधन भिन्न भिन्न रूप में हो रहा है, वैसे ही एक ही भगवान का संबोधन भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न लीलाओं के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से प्रकाश होता है। व्यक्ति एक ही है और वो कौन है, एकम एव अद्वितीय परम पुरुष। परम पुरुष जो एक है और जिनका कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम और कृष्ण में कोई अंतर है, ऐसा नहीं कि राम और विष्णु में कोई अंतर है, ऐसा नहीं कि नृसिंह और वामन में कोई अंतर है, ऐसा नहीं कि वराह और मीन में कोई अंतर है। एक ही भगवान भिन्न भिन्न रूप में लीला विलास कर रहे हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु और हम एक हैं। यह यहां अवतार और जीव में अंतर है। भगवान का अवतार और जीव, भगवान का अंश, भगवान का अंश का विस्तार दो रूप में होता है, एक है स्वांश और दूसरा है विभिन्न नाम्स। स्वांश है अवतार, जो भगवान स्वयं अपने आप को विस्तार करते हैं, और विभिन्न नाम्स का मतलब है जो भिन्न है उनसे परंतु उनका अंश है, और वो क्या है, जीव। हम सब भगवान का विभिन्न अंश है। गुण के विचार से हम एक है, भगवान भी, भगवान चेतन है, हम भी चेतन है, परंतु आयतन के विचार से भिन्न है। भगवान है परम आत्मा और हम है अणु आत्मा। हम शूद्र, वे है पूर्ण। जैसे एक बूंद पानी और समुन्दर सागर, एक बूंद पानी भी पानी और सागर भी पानी, परंतु एक बूंद पानी को कोई सागर नहीं कहते हैं, है ना। एक बूंद पानी और सागर में अंतर है। चिंगार और आग, चिंगार भी आग है परंतु चिंगार एक छोटा सा आग है, आग की कर्ण है। तो वैसे ही हम भगवान का विभिन्न अंश है। तो अंश का उद्देश्य क्या है, अंश का अस्तित्व का उद्देश्य क्या होता है, अंश का अस्तित्व का उद्देश्य होता है पूर्ण के साथ युक्त होना। जब अंश पूर्ण से अलग रहता है तब अंश का अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता है, और वो अपना अस्तित्व को खो बैठते हैं। जैसे चिंगार जब आग से निकलकर राख में गिरता है तो क्या होता है, चिंगार का वो भी राख बन जाता है, है ना। तो वैसे ही हम चेतन का कर्ण होने के कारण जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं और इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं तब हम भी भौतिक हो जाते हैं, जड़ बन जाते हैं। ये जो शरीर को हम जो भी भौतिक हैं, ये भौतिक शरीर को हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। मैं ये शरीर का परिचय के अनुसार अपना परिचय मान लेते हैं। मैं पुरुष हूं या मैं युवक हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ऐसे शरीर के विचार से हम विचार अपना स्वरूप लेते हैं। हर व्यक्ति ऐसे ही सोच रहा है, केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी। और इस शरीर के अनुसार अपना आचरण करना शुरू करता है और उसका जो आत्मिक जो गुण है उसको खो बैठते हैं। हमारे स्वरूप में हमारा परिचय है, हम आत्मा है, और आत्मा का गुण कैसी है? आत्मा है सच्चिदानंद। सत का मतलब नित्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। चित का मतलब जो पूर्ण चेतन है, जिनमें चेतना है, जो चेतना का स्रोत है। और आनंद, आनंद हम आनंदमय है, आनंद हमारे साथ है, हम स्वाभाविक रूप में ही आनंद हमारे साथ है। परंतु अपना परिचय खो बैठने के कारण हम हमारे जो ये स्वाभाविक गुण है उसको भी खो बैठे हैं। खोकर हम ये शरीर को, उस शरीर में उस गुणों का प्रयोग या प्राप्ति के अन्वेषण करते हैं। हम सच्चिदानंद हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम ये शरीर को सच्चिदानंद बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम सच्चिदान सत्य, हम नित्य हैं, अविनाशी हैं, परंतु हम अब क्या कर रहे हैं? ऐसे हमारे स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक स्थिति में हम नित्य हैं, अविनाशी हैं, अर्थात अमर हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम ये शरीर को अमर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये शरीर को अविनाशी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चेतन हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? ये शरीर को चेतन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और हम आनंदमय हैं, और हम क्या कर रहे हैं? ये शरीर के माध्यम आनंद प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं। परंतु शरीर का धर्म भिन्न है, शरीर नाशवान है, शरीर जड़ है, मतलब शरीर में चेतना नहीं है ऐसे, और शरीर में आनंद नहीं है। जो जड़ है उसमें आनंद कैसे होगा? जो अचेतन है उसमें आनंद कैसे होगा? तो वैसे ही ये शरीर के द्वारा हमें ना तो हम नित्य बन सकेंगे, न तो हम कभी पूर्ण चेतना प्राप्त हो सकेंगे, न तो हम आनंद प्राप्त हो सकेंगे। परंतु हम अगर अपना आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब बहुत आसानी से ही बिना प्रयास ही हम सत चित आनंद बन सकते हैं। केवल हमारा चेतना को ये शरीर से उतार कर आत्मा में प्रयोग करना होगा। वो कैसे संभव? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के द्वारा। कैसे? जैसे सूरज, जब गगन में सूरज का जब उदय होता है तो उस सूरज के किरण से हम सूरज को दर्शन करते हैं, अपने आप को दर्शन कर सकते हैं और हमारे पास में जो कुछ है उसको भी दर्शन कर सकते हैं, है ना। वैसे ही जब हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ लेते हैं तब भगवान के दर्शन करने के माध्यम हम अपने अपना स्वरूप को दर्शन या पहचान सकते हैं और बाकी सब कुछ दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं होता है। जैसे अंधेरे में एक आग का थोड़ा सा एक कण के द्वारा आप कुछ दर्शन कर सकते हैं, हो सकता है कि एक थोड़ा सा आग है, थोड़ा सा ज्योति है उसमें, है जैसे एक अगरबत्ती, अगरबत्ती क्या है, वो आग का एक कण है, तो उससे एक कण, आग के कण से आप क्या कुछ दर्शन कर सकते हैं, आपके उस कण से अपना अपने आपको भी दर्शन कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसे ही हमारा जो क्षुद्र चेतना है उस चेतना के द्वारा हम कुछ भी नहीं दर्शन कर सकते हैं, अपने आप को भी पहचान नहीं सकते हैं, परंतु जब हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ लेते हैं और उस संपर्क की स्थापना होने से जब भगवान को दर्शन करते हैं तो उस भगवत दर्शन के द्वारा हम सब कुछ और अपने आप को भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे सूरज की उदय होने से, उस किरण से, सूरज की उदय के कारण, सूरज की किरण से ही हम सूरज को दर्शन कर सकते हैं और उसके कारण और बाकी सब कुछ हम दर्शन कर सकते हैं। तो बृहद भागवतमृत में इसका विचार बहुत सुंदर रूप में हुआ है, भक्ति का स्तर का वर्णन हुआ है। तो आज तो काफी देरी हो गए हैं, 8 बज गए हैं, तो मैं यहाँ ही समाप्त कर रहा हूँ आज का क्लास। भगवत बृहद भागवतम मृदम में देखूंगा कल गीता के क्लास में, कल शाम को मैं बृहद भागवतम मृतम का ही चर्चा करूंगा। देखिए ये बृहद भागवतम मृतम इतना एक गहरा विषय है कि इसके बारे में बोलना शुरू करने से हम ऐसे महीना भर, ये बृहद भागवतम मृतम के ऊपर हम एक महीना भर सेमिनार दिया था वृंदावन में सन 1988 साल में, एक महीना भर इसी समय ही दिया था। अब ये दामोदर महीना में मैं पहले वृंदावन में एक महीने के लिए रहता था दामोदर महीना में, और उस समय एक एक साल एक विषय पर सेमिनार देता था। तो एक बार बृहद भागवतमृतम के ऊपर एक महीना भर हम सेमिनार दिया, तो ये भी ये था मेरा थोड़ा चिंता था कि हम 3 दिन में हम कितना समझाऊंगा, कितना हम, तो ये 3 दिन में जो मैं करने को कोशिश किया था वो था केवल इंट्रोडक्शन, दिग्दर्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ में आए कि भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति क्या है और भक्ति का स्वरूप कैसी है और भक्ति के स्तर किस तरह होता है, सब क्या समान स्तर के भक्त हैं, नहीं। तो ये विचार ऐसे हम किया बृहद भागवतमृतम के अनुसार। संक्षेप में मैं ये बता रहा हूं, जो जब नारद मुनि ने, अच्छा बृहद भागवतमृतम का सूचना हो रहा है, परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुना, तब सुनने के पश्चात उन्हें अपना मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे थे। तो तब उनके माता उत्तरा ने उनके पास आकर बोला, पुत्र तुम्हारा गुरु से तुम जो कुछ सीखे हो, जो कुछ तुम प्राप्त हुए हो, वो हमको भी प्रदान करो। तब परीक्षित महाराज ने अपने माता को ये वर्णन करना शुरू किया, जो बृहद भागवतम के रूप में सनातन गोस्वामी ने स्थापना किया। बताया एक समय प्रयाग में ऋषि मुनि ऋषियों ने माघ महीना में इकट्ठा होकर जब बैठे हुए थे, तब एक दूसरे को प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताने लगा कि आप ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त हैं, आप ही भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। तो उस समय नारद मुनि देखा वहां एक ब्राह्मण आया और बहुत सुंदर रूप से भगवान का पूजन किया, और पूजा करने के पश्चात भगवान को भोग जो लगाया था वो वैष्णवों में और ब्राह्मणों में बांटा, उनको खिलाया। उसके पश्चात अपना परिवार के साथ उन्होंने उनका प्रसाद ग्रहण किया। तो ये देखते हुए नारद मुनि सोचा कि ये ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तो जाके उनके पास जाके नारद मुनि ने उनका गुण कीर्तन करना शुरू किया, आप कितने महान भक्त हैं, आप भगवान का कितना कृपा प्राप्त हुए होंगे। तब उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं भक्त नहीं हूँ, मेरा भक्ति क्या है, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य की खातिर मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान का सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि पूजा करना ही मेरा कार्य है, तो इसलिए मैं पूजा करता हूँ भगवान का। परंतु दक्षिण भारत में जो एक राजा है वो ही है भगवान का श्रेष्ठ भक्त। तब नारद मुनि उस राजा के पास गया और जाकर देखा वो कितना महान भक्त है और कितना सुंदर रूप से वो अपना भगवान ये अपना राज्य को भगवान का ही राज्य समझकर भगवान को सेवा कर रहे हैं। तब नारद मुनि ने जब उनके पास जाकर उनको बताया कि वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, तो उन्होंने नारद मुनि को बोला, नहीं मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, हमें भक्ति क्या और मेरा वैभव भी क्या, मेरा आयु भी केवल कोई साल के लिए है, असल में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है देवराज इंद्र। तो नारद मुनि ने इंद्र के पास जाकर उनका महिमा कीर्तन करना शुरू किया। तो इंद्र ने तब बताया, नहीं मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ, ब्रह्मा जी है भगवान का श्रेष्ठ भक्त। तब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको महिमा कीर्तन करके बताना शुरू किया कि वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। पर ब्रह्मा जी बताया, नहीं मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त नहीं बन सका, परंतु असल में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है शिव जी। तो नारद मुनि शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर जब भगवान के भक्त के रूप में उनका प्रशंसा करना शुरू किया, तो शिव जी ने बताया, नहीं मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ, भगवान का श्रेष्ठ भक्त है वैकुंठ के अधिवासी, वैकुंठवासी जो भगवान का नित्य पार्षद है। तब पार्वती ने बताया, और सारे वैकुंठवासियों में से श्रेष्ठ है लक्ष्मी जी, भगवान के श्रेष्ठ भक्त। तब नारद मुनि जब वैकुंठ जाने का प्रयास कर रहे थे, तब शिव जी ने उनको बताया, देखो असल में भगवान का सबसे बड़ा भक्त है प्रह्लाद। तब नारद मुनि सुतल लोक में जाकर प्रह्लाद महाराज को मिले, तो प्रह्लाद महाराज बताया कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त नहीं बन सका, असल में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है हनुमान, क्योंकि मैं तो भगवान का स्मरण किया, बचपन में उनका शरण लिया था और भगवान हमें रक्षा किया, परंतु असल में भक्त हो है वो है जो भगवान को सेवा करते हैं। मैं तो सेवा नहीं किया भगवान का, केवल स्मरण किया था और अभी भी स्मरण ही कर रहा हूं। उनका सेवा का मौका हमें नहीं मिला है, भगवान का कृपा से ही भगवान का सेवा का अवसर मिलता है। और देखो हनुमान भगवान का कितना सेवा किया, और ऐसे उन्होंने हनुमान का गुण वर्णन करना शुरू किया। तब नारद मुनि हनुमान के पास गया। जब हनुमान के पास जाकर रामचंद्र की महिमा और रामचंद्र का कृपा उनके ऊपर कैसा था उसका वर्णन करना शुरू किया, तो हनुमान ने रोने लगा, बोला अगर मैं मेरा प्रभु मेरे पर प्रसन्न होकर हमें अगर कृपा करता तो क्यों वो हमको छोड़कर चले गए, मैं उनकी कृपा पात्र नहीं हूँ। असल में भगवान का कृपा पात्र है पांडव। देखो भगवान कैसे उनको संग दे रहे हैं और उनका देखभाल कर रहे हैं। जब कुंती ने कृष्ण के पास, कृष्ण जब हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जाने का तैयारी कर रहे थे, तब कुंती ने आकर कृष्ण को बोला को और कुछ दिन ठहरने के लिए, तो कृष्ण रह गया कुंती के पास। तो ऐसे ही वर्णन किया कि पांडवों ने भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जब नारद मुनि पांडवों को पास गए तो पांडवों ने बताया कि वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त नहीं है, श्रेष्ठ भक्त है जदुगण जादव, जो भगवान का साथ हर समय रहते हैं, जो भगवान का स्वजन है, अपना है। तो नारद मुनि द्वारका में जादव को मिलने को गया तो जादवों ने बताया कि सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं उद्धव, क्योंकि उद्धव भगवान के साथ हर समय रहते हैं और भगवान भी उद्धव को कितना प्यार करते हैं। उद्धव भगवान के साथ हर समय रहते हैं, जब भगवान भोजन करते हैं तो कोई पास नहीं रहता है, केवल उद्धव ही रहता है और उद्धव को ही भगवान का प्रसाद मिलता है। और रात को भगवान जब सोते हैं तो उद्धव भगवान को पैर दबाते हैं और पैर दबाने के बाद अपना गोद में भगवान को पैर रखकर वो भी सो जाते हैं। तो इतना गहरा संपर्क है भगवान के साथ उनका, तो वही है श्रेष्ठ भक्त। जब उद्धव के पास गए नारद मुनि, तब उद्धव बताया नहीं मैं तो भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं, भगवान का श्रेष्ठ भक्त है ब्रजवासीगण। और ब्रजवासियों में से सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं गोपियां, और गोपियों में से श्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे भक्ति का पराकाष्ठा, भक्ति का परम उत्कर्षता कहाँ है, उसका वर्णन ऐसे बृहद भागवतम में हुआ है। देखिए श्रीमद् भागवतम पढ़कर ये सिद्धांत हमें मिला था नहीं, परंतु भागवतम का यही सिद्धांत है। धीरे धीरे एक एक स्कंद के बाद जब हम दशम स्कंद में जाते हैं तो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण का ही हाश्वज्जल मुखारविंद, कृष्ण का तीन लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला। और वो तीन लीला में से सर्वश्रेष्ठ कौन सी लीला है, वृंदावन लीला। और वृंदावन में भगवान के भक्तों में से कौन श्रेष्ठ भक्त है, गोपियां, और गोपियां में से श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो ये सिद्धांत सनातन गोस्वामी की ये बृहद भागवतमृतम के माध्यम कितना आसानी से, कितना सरल भाव से हम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मैं बृहद भागवतमृतम के ऊपर सेमिनार देने का संकल्प किया था। तो परीक्षा होगा कल। ओके कल हम जो परीक्षा देना चाहते हैं तो कल शाम को मैं आपको प्रश्न पत्र दूंगा। आई गिव यू द क्वेश्चन पेपर एंड यू गेट टू डेज। यू कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस, यू कैन प्रिपेयर द आंसर्स एट होम। घर में आप उसका प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। आप ग्रंथ के ये ले सकते हैं, परंतु इसका तो सारे जो बेसिस फाउंडेशन, मतलब इसका जो हमारा, मैं जो बताया आपका नोट के ऊपर ही आपको आंसर्स देना पड़ेगा। तो और इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है? जो पास करेगा परीक्षा में, हाँ हाँ, उनका भगवान के पास जाने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा। असल में हमें जो इसका पुरस्कार, क्या असल पुरस्कार क्या होगा? असल पुरस्कार होगा भगवान के पास वापस जाने का अवसर। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा। तो आप आज संडे फीस्ट है, प्रसाद नहीं लाया ऊपर, एक है ना नीचे? अच्छा ओके, होएगा एखन दिए देवे? ओ अच्छा, तार पड़े। ओके तो हाँ, हम कुछ समय कीर्तन करते हैं 5-10 मिनट के लिए। किसी को प्रश्न है कोई? हाँ यस, हाँ बताइए। विभिन्न अंश ब्रह्मा, हाँ सब ये विभिन्न अंश है। ब्रह्मा जी भी गुणावतार है और नारद भी शक्तावेश अवतार है, परंतु विभिन्न अंश है। ये दो तत्व है, विष्णु तत्व और जीव तत्व। हम सब जीव तत्व हैं और भगवान का अवतार जो है वो है ये विष्णु तत्व। अर्जुन, हाँ अर्जुन भी भगवान का बहुत निकट, बहुत बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु अर्जुन से भी आगे बढ़कर हैं जादव, जोदू, जो द्वारका में भगवान का स्वजन है, वही बताया। पांडव में से ऐसे हम सोच सकते हैं कि अर्जुन ही श्रेष्ठ भक्त हैं पांडव में से, परंतु अर्जुन से भी बढ़कर हैं जादव। जादवों में से सबसे बढ़कर हैं उद्धव, और उद्धव से भी बढ़कर हैं ब्रजवासियां, और ब्रजवासी में से श्रेष्ठ भक्त है गोपियां, और गोपियां में से श्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है? हाँ उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान के कजन है। भगवान का भाई है और भगवान के सखा भी थे, मैं सखा भी हैं, और उद्धव जी हर समय भगवान के साथ रहते हैं। हाँ, और ऐसे उद्धव हैं बृहस्पति का शिष्य, बृहस्पति से उद्धव का शिक्षा मिला, और उद्धव को देखने में भी भगवान ही, देखने में भी कृष्ण ही, कृष्ण की ही तरह है। और उद्धव जो कपड़ा, कृष्ण का जो कपड़ा उतार लेते हैं उद्धव वो कपड़ा पहनते हैं। जो खाने के बाद भगवान जो खाना जो रह जाता है वो खाना उद्धव खाता है, क्योंकि उद्धव भगवान का कपड़ा पहनते हैं और शक्ल भी उनका उनका रूप भी भगवान का जैसा है, तो इसलिए उनको देखने से भगवान ही जैसा, कृष्ण ही जैसा दिखाई देता। उसके कारण उद्धव जब वृंदावन में गए थे तो गोपियां ने सोचा कि कृष्ण वापस आ गए हैं, परंतु बाद में जब देखा ना ये कृष्ण नहीं है और कोई है, तो उनका बहुत कष्ट हुआ। मार्किंग वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप हेल्प लेकर भी देखिए। और हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि यहां बैठकर लिखेंगे? इमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये सोचा था कि घर में देखिए हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कहना है, हम जो कह रहे हैं वो आप समझ लें। तो आप कितना तक समझे हैं ये हम जानना चाहते हैं। तो घर में बैठकर भी अगर आप लिखेंगे, किताबें पढ़कर भी अगर लिखेंगे, तो उसमें भी तो आपका कुछ समझना पड़ेगा ना। किताब पढ़ने में से भी कुछ समझौता आएगा। पर आप जो कह रहे हैं वो भी सोचने का विषय है, वो भी सोचने का विषय है। अच्छा, तो ठीक है, हम काल विचार करके बताएंगे। अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? महानंद में रहती। अच्छा, कितने बजे वापस आती हो काम से? 8:30 बजे। अच्छा, और सुबह कितने बजे जाते हो? 9 to 9। कहाँ? और 2 बजे के बाद? 2 to 5 ये फ्री। ओके, व्हाट इफ यू टेक द एग्जाम्स एट 2 o'clock? ठीक है, तो कल 2 बजे कौन कौन आ सकेंगे? ये तो कोई, ये भगवान का भक्ति जो है वो तो नित्य है, उसमें युग का कोई विचार नहीं है। क्योंकि राधा रानी तो है, नित्य है, हर समय राधा रानी ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। और जब कृष्ण जब राधा रानी के भाव लेकर आते हैं तो सब श्रेष्ठ भक्त बन जाते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, तो ये सही बात है। तो परीक्षा कब लेंगे? शाम को। तो कल भी तुम छुट्टी कर लो। ठीक है, तो भगवान की यह नौकरी मिल जाएगा। और देखो, भगवान के नौकरी से तो बढ़कर और कोई नौकरी नहीं हो सकता है ना। अच्छा। हाँ, भगवान को भक्ति करने से जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों जगत का ही काम बन जाता है। तो कल शाम को आप कौन कौन आ सकेंगे परीक्षा देने के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ उठाया? ओके। भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि।